ओम शांति। कैसा रहा कल का बाबा? कैसा लगा बहने बताओ? बहुत अच्छा था। और कुछ बताओ, कल का बाबा कैसा था? आप कहेंगे कल का अलग होता है क्या? फिर भी मीठा था कल का बाबा। बंद कर दो भाई में जरा। बहुत प्यारा था, बहुत शक्तिशाली था। अच्छा, जन्मदिन पे कोई भी आए तो शक्तिशाली नहीं होता, कुछ और होता है, प्यार ही प्यार होता है। जन्मदिन हमारा भी था और बाबा का भी। जब बाबा की दृष्टि दे रहे थे, आपने देखा हो ध्यान से टीवी स्क्रीन पर बाबा का वो सब कुछ दिखता है ना, वैसे तो नहीं दिखता, दूर से प्यार भरा स्वरूप दिखाई दे रहा था। कौन सी सौगात ले ली बाबा ने कल? व्यर्थ की। हाथ तो सभी ने उठा दिया था देने के लिए, पर ये काम इतना सहज तो नहीं है, जीवन इसी में लग रहा है। व्यर्थ से मुक्त होने के लिए जीवन बीत रहे हैं। और क्या चाहा बाबा ने हमसे? वही पहले वाली लहर फिर थी, सब निर्विघ्न बन जाए, क्योंकि बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसके यज्ञ में विघ्न हो, उसके बच्चे विघ्नों में हो। और भी एक खराब सी बात कह दूं, खराब बात, उसके बच्चे विघ्न डाल रहे हो। ऐसे भी तो है ना महारथी बच्चे, जो बाबा के कार्य में ही विघ्न डालते हैं, उसको ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहा साथियों को भी निर्विघ्न बनाओ। अपने विघ्न चल रहे हैं, किसी के बाहर से भी विघ्न आ रहे हैं, बाबा ये चाहता है सभी उसके बच्चे निर्विघ्न हो जाएं। क्या फायदा होगा इससे? और बताओ भी गहरी बात, कौन है हम सब? और कौन है हम सब? और कौन है? सृष्टि के आधार मूर्त। हमारी स्थिति सृष्टि की स्थिति को बनाती है। हम अगर विघ्नों से मुक्त होंगे तो सारी सृष्टि क्या होगा? विघ्नों से मुक्त हो जाएगी, उनमें बल आ जाएगा। और हम अगर विघ्नों में होंगे, जो विघ्न विनाशक हैं, यदि वो विघ्न डाल रहे होंगे या विघ्नों में दिन बिता रहे होंगे, तो संसार के लोगों को विघ्नों को नष्ट करना कठिन हो जाएगा। और दूसरी बात ये कही, इधर से आवाज आई थी, पुरुषार्थियों को वाइब्रेशंस मिलेंगे, बल मिलेंगे। हम जिस स्थिति में रहेंगे, हमारे आसपास के सभी साथी भी वैसा सीख लेते हैं, वैसा देख लेते हैं। कहाँ विघ्न बिल्कुल न हो, संकल्पों में भी विघ्न न हो, सबसे बड़ी बात और पुरुषार्थ करने की बात यह। और भी कुछ बात थी? हाँ बोलो, जिसको जो याद है बोल दो। क्या बोलो? सारा संकल्प ही, सारा समय व्यर्थ में जाता है ना। जो लोग बहुत बिजी हैं, जो ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, उनका टाइम कहाँ जाता है? ये सच्ची बात है ना, सच्ची है, यही सत्य है। मधुबन का एक अनुभव सुना दूं, शायद ही उस समय का अशोक भाई बैठा हो। बहुत साल पहले दादी जब अव्यक्त मुरली सुना रही थी, तो एक प्लान बन गया कि एक मास मौन रखा जाए। बाबा ने कुछ ऐसी बात मुरली में कह दी, एक मास सब मौन रखेंगे। सबने इच्छा जाहिर की, दादी ने भी कहा रखो भाई। पहला दिन सोमवार का, हर व्यक्ति मौन में था। दो टाइम भोजन कर दिया गया, तीन टाइम नहीं, दो टाइम। हर व्यक्ति मौन में था, वो भी मौन थे जो कभी चुप नहीं रहे थे जिंदगी में। बड़ा भारी आश्चर्य था ये। और सबने देखा, मधुबन ऐसा हो गया जैसा परम धाम। बिल्कुल प्रैक्टिकल फीलिंग, और सब फ्री हो गए। लोगों को दिन पूरा करना मुश्किल हो गया कि चलो योग करेंगे, काम तो रहा नहीं कुछ। दूसरा दिन अब बहुत लोग जो मुश्किल अनुभव करते हैं, मौन रहना भी भारी साधना है ना, भारी हो गया कईयों को। हमारे पास एक पुरानी रहती थी, वो कहती थी क्या सारा दिन चुप चुप रहते, मुंह में भी बदबू हो जाएगी तुम्हारे तो दूसरे दिन सुख संवतन हो गया। पांच दिन चला, लोगों से रहा नहीं गया, आखिर वो बंद कर दिया था। इन्हें कहा मुश्किल हो रही, सबको बंद कर दिया। तो सारा समय मनुष्य का जा रहा है व्यर्थ में और खाने पीने में। अगर खाना दो बार कर दिया जाए तो कई घंटे बच जाएंगे, है नहीं ठीक बात? बिल्कुल सत्य बात। ये यज्ञ में कई बार सबकी रिक्वेस्ट पर दादी ने दो बार भोजन कर दिया, सवेरे 10:30 के आसपास और शाम को ऐसे ही 6:30। कई लोग तो बहुत सुखी हो गए, कई को जिनको ज्यादा भूख लगती है 10:30 बजाना मुश्किल हो गया सवेरे, बाकी बहुत अच्छा रहा, हेल्थ भी अच्छी, टाइम बहुत बचता है। तो ये बाबा बार बार कह रहे थे कल, व्यर्थ संकल्प बहुत समय ले लेते हैं। और कोई बात बहनों को अच्छी लगी? हाँ, वेस्ट नहीं बेस्ट। और बोलो, थोड़ी बातें थी। हाँ, स्टॉप कहो, स्टॉप हो जाए, जो चाहा वही हुआ, बहुत बड़ी बात थी है। संकल्पों पर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, जो चाहे वही हुआ। तो संकल्पों में विघ्न कौन कौन से पड़ते हैं, जरा प्रैक्टिकल बात पर आ जाएं। हमें अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना है, आज यही टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। संकल्पों में विघ्न कौन कौन से आते हैं और कौन सी आत्मा निर्विघ्न रह सकती है, किसके जीवन में विघ्न बहुत महसूस होते हैं। सब एक साथ रह रहे हैं, हम यज्ञ की बात करें, भोजन एक साथ, सब सुविधाएं हैं, सबका निश्चिंत जीवन है, यहाँ कमाने खाने की कोई चिंता नहीं। या माताओं को है सब्जी का क्या भाव है, टमाटर बहुत महंगे हो गए, किसी को पता है? नहीं पता है, निश्चिंत जीवन है। फिर भी कई आत्माएं विघ्नों को अनुभव कर रही हैं, क्यों बोलो? चलो पहले इस पर आ जाएं, संकल्पों में कौन कौन से विघ्न पड़ते हैं। व्यर्थ तो है ही, व्यर्थ में क्या क्या? संकल्पों में विघ्न, बाबा ने कहा संकल्पों में भी विघ्न न हो। बोलो, सबको पता है, कुछ न मिले, दूसरों को मिल रहा हो। पहली बात नोट करें, नोट करने वाले, इच्छाओं के विघ्न बहुत पड़ते हैं। आगे चलो, कम से कम 10 बातें निकालेंगे। इसमें भी कईयों के जीवन में विघ्न पड़ते हैं मान की इच्छा के कारण। ये सबसे भारी और सूक्ष्म विघ्न होता है ब्राह्मणों के जीवन में, मान की इच्छा रहती है वो पूर्ण नहीं होती। दूसरे आगे बढ़ गए, तीसरे विघ्न पड़ते हैं, इसी बात से जोड़ दें, ईर्ष्या के कारण। खुद तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं पर दूसरों को भी बढ़ने देना नहीं चाहते, दूसरों को साथ देना, जो बाबा बार बार कह रहे हैं, साथियों को निर्विघ्न बनाओ, नि साथ दो। तो सबसे बड़ा साथ ये है कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें हम आगे बढ़ने में मदद करें, रोके नहीं। बहुत लोग रोकते हैं दूसरों को आगे बढ़ने से, उन्हें कई समस्याएं होती हैं, हमारा क्या होगा? अब समझ गए, हमारा क्या होगा? नाम तो इनका हो जाएगा, हमें तो कोई पूछेगा नहीं। ये तो अभी पीछे आए हैं, हम बहुत पुराने, नाम हमारा होना चाहिए, इनका हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? अब इसका उत्तर दो, कैसे हमें निश्चिंत रहना चाहिए, हमारा क्या होगा। हमारी जीवन नैया बाबा के हाथ में है, हम और आगे बढ़ेंगे ना। ये भगवानों वाच है, जो दूसरों को आगे बढ़ाते हैं वो स्वयं। अब हम इस भगवान की बात पर विश्वास करें या अपनी बात पर विश्वास करें कि मेरा क्या होगा ये आगे बढ़ गए तो, किसकी बात पर विश्वास करें, सोच लें इस पर। सभी मनुष्य की कमजोरी हो गई है वो अपनी बात पर या जो समाज में प्रचलित बातें हैं संसार में उन पर ज्यादा विश्वास करता है, और बाबा ने जो कह दिया उस पर विश्वास कम करता है। विचार करें आप इस बात पे, हम सभी बाबा की एक बात पे बहुत कम विश्वास करते हैं, सब नंबर वार कम विश्वास कर रहे हैं। वो है, मैं एक बात आपके ध्यान में देता हूँ, बाबा ने कहा तुम बेफिकर बादशाह बन जाओ। क्यों बन जाओ, मैं बैठा हूँ, तुम्हारी फिकर मैं करता हूँ, मैं मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर लेकर फखुर ले लो, चिंता ना करो, तुम्हें चिंता करने कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं हूँ तुम निश्चिंत हो जाओ। लेकिन हम करते हैं, चिंता होती है, बाबा तो है पर अनेक संकल्प उठते हैं ना, उठते हैं या नहीं सभी को। तो यहाँ हमें चेक करना है हमारे बाबा पर विश्वास में कमी है, कि जब हमने बाबा को जीवन नैया दे दी तो बस कहाँ जाएगी नैया, कहाँ पहुंचेगी हमारी पार, कहाँ लक्ष्य पर पहुंच जाएगी। दादी जानकी का अनुभव सुना हो आपने, कभी वो कुछ चार्ट आदि लिख रही थी, थोड़ी चिंता कर रही थी, बाबा से कुछ पूछा, बाबा ने उन्हें कहा बच्ची दृष्टि दी और कहा, शिव बाबा आ जाते थे ना तुरंत, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा फट से आ जाते थे कभी भी सारे दिन में, कहा तुम चिंता न करो, तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है। वो उनको याद रहा जब उनको विदेश में भेजा जाने लगा, 74 यही की बात है, तो विदेश में वो जाए, इंग्लिश नहीं जानती, विदेश में कभी इस तरह की सेवा नहीं की, क्या होगा। बाबा ने कहा तुम सोचो नहीं, तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है। विश्वास ने बहुत काम करा दिया ना, उससे पहले भी कई लोगों को भेजा गया था लंदन में, लेकिन नहीं हुआ था काम, दादी गई और उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा कार्य शुरू किया, क्योंकि वहां कार्य की स्पीड बहुत धीमी थी, भारत में कार्य की स्पीड तेज होती है, वहां बहुत धीमी थी। थोड़ा सा बता दूं, जैसे भारत में एग्जीबिशन होती है, वहां एग्जीबिशन लगाई अपने लोगों ने, सारे दिन में लोग कितने देखने आए होंगे, 3, बोर हो गए सब। और भारत में प्रदर्शनी लग जाए कहीं, वहां इतनी भीड़ हो जाती है कि समझाने वालों का हाल ही बिगड़ जाता है, तो बोर होने लगे। लेकिन दादी ने अपनी दूसरी साधनाओं के द्वारा वहां स्थिरता लाई और सबको आगे बढ़ाया। तो जिनकी जीवन नैया भगवान के हाथ में है वो कैसे होने चाहिए, माताएं बोलो, सोच के बोलो, है जीवन नैया बाबा के हाथ में या नहीं। और आपके बच्चों की जीवन नैया वो किसके हाथ में, वो आपके हाथ में या बाबा के। माताएं सोच लो, पीछे वाली भी माताओं को चिंता होती है मेरे बच्चों का क्या होगा। एक माता 20 साल से ज्ञान में अपने कुमार को साथ लाई मेरे पास, इसको कहो शादी करे, क्यों ज्ञान नहीं है क्या तुम्हें, है ज्ञान तो, पर मैं सोचती हूँ मैं मर जाऊंगी, मैं बूढ़ी हो गई, इसका क्या होगा। मैंने कहा माता 20 साल ज्ञान में चल के तुमने सफल नहीं किए, 20 साल तुम्हें पता ही नहीं जिसका हाथ भगवान ने पकड़ा हो उनका क्या होगा। ये हाल माताओं का ही नहीं, कुछ पिताओं का भी है, पिता खुश हो रहे थे, माताएं सोच रही हमारा ये हाल बता दिया, सबका नहीं, चिंता होती है बच्चों की, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, विश्वास की चीज है। भगवान ने जो कह दिया वो संपूर्ण सत्य है। समय आप इस बात को अपने अंदर बाबा की बहुत सारी बातों को नोट करें मुरलियों से, जो वो कह रहा है वही संपूर्ण सत्य है। लोग प्रश्न लेकर आते हैं ना, बाबा कहता है कल 5000 साल का था, ये फलाने लोग डायनासोर वाले ये वो कह रहे हैं कई लाख साल का था, किसकी माने? मैं पूछा करता हूँ ज्ञान लिए हुए कितना समय हुआ? 5 साल। अब भी पूछ रहे हो किसकी माने? भगवान की महिमा ही में ही है, वो परम सत्य है। तो सत्य उसकी बात है या उन वैज्ञानिकों की जो केवल रिसर्च कर रहे हैं? आज कहते हैं 10 करोड़ साल पुरानी है ये वस्तु, 5 साल के बाद कह देते हैं 10 लाख पुरानी है, वो गलत थी रिसर्च। परसों कह देंगे 10,000 साल पुरानी है, और सत्य के नजदीक आ जाएंगे कुछ दिन में, क्या कह देंगे? 5,000 साल पुरानी है। तो उन वैज्ञानिकों की बात सत्य है जो रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च इज नेवर परफेक्ट, रिसर्च एक खोज होती है, वो संपूर्ण थोड़ा ही है। संपूर्ण वो उसका ज्ञान है जो स्वयं संपूर्ण है, सीधी सी बात है ना। जो स्वयं संपूर्ण नहीं है उनका ज्ञान संपूर्ण हो ही नहीं सकता। और अगर विज्ञान का ज्ञान संपूर्ण होता, अगर वैज्ञानिकों की कही हुई बातें संपूर्ण सत्य होती, तो ये संसार बहुत क्या होता? सुखी होता। आज आप मेडिकल साइंस को देख लो, मेडिकल साइंस डॉक्टरी कितनी आगे बढ़ गई है, बड़ी बड़ी चीजें वो कर देते, ऑपरेशन से क्या कर देते है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बीमारियां रुक रही है, बढ़ रही है। तो जरूर कहीं मिसिंग है। कोई भी रिसर्च परफेक्ट होते नहीं कभी, परफेक्ट केवल बाबा है, उसके द्वारा कही हुई बातें परफेक्ट है। तो हम बाबा की कुछ बातों में विश्वास किया करें। कल की एक बात पे और थोड़ा चिंतन कर लें, बीच में टॉपिक छोड़ के। राज बोलो, बाबा आ गया है, और दूसरा राज होती है ये फीलिंग क्या, कि राज आया कि आया, या कलयुग बड़ा बुरा आया कि आया, क्या है फीलिंग? सुंदर राज आया कि आया, या बुरा समय आया कि आया, क्या है? सुंदर हमारा सत्युगी राज आया कि आया। और क्या चेक करने को कहा बाबा ने? असली बात यह है जिसके लिए मैंने पूछा आपसे, नहीं सत्युगी राज आया कि आया, इसके लिए चेक करो हम संपूर्णता के कितने करीब हैं। संपूर्ण राज आएगा, चलेंगे तो संपूर्ण ना, हम उसके कितने समीप हैं। ये है गुह्य राज। जैसे जैसे हमारी संपूर्णता आती जाएगी, संपूर्ण राज के नजारे हमारे सामने आते जाएंगे, उसका नशा हमें चढ़ता जाएगा, बहुत अच्छी फीलिंग भविष्य की हमें होती रहेगी। तो एक मास का बाबा ने होमवर्क दे दिया, कौन सा? निर्विघ्न रहना है। कईयों को बहुत धुंध लग गई है, 2 के अनुभव सुना देता हूं आपकी उमंग उत्साह के लिए। एक दिल्ली का भाई ज्ञान में था, पहले ढीला ढाला हो गया था, हम भट्टी करने गए थे, अभी 2 मास हुए हैं, फिर से उसमें जागृति आ गई। आज उसने बताया, आज मैं सवेरे 3:30 बजे से उठा हूँ, बाबा से तिलक ले लिया है, 1 मास तक कोई भी व्यर्थ संकल्प आने नहीं दूंगा। जबरदस्ती भी कैसे आ सकते हो, गेट बंद। कहा मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, हमें बड़ी खुशी, 2 मास में योग बहुत अच्छा हो गया है मेरा, लगता है मेरी मंजिल बिल्कुल पास है। मैंने कहा माया का क्या हाल है? मैंने पूछा तो कुछ और था, उसकी पत्नी का नाम माया देवी है। उन्होंने कहा माया तो आ नहीं सकती। मैं समझ गया ये दूसरी माया की बात कर रहा आज। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी पत्नी उसके मार्ग में विघ्न बहुत डालती है। मैं इस ढंग से पूछा था कि माया का क्या हाल है, लेकिन उसको वो माया देवी याद ही नहीं थी, उसको था कि माया आ ही नहीं सकती मेरे पास। दूसरे ने भी, एक ने शुरू किया, सवेरे 3:30 उठ के मुझे सब कुछ करना, 1 मास तक अमृत वेला उसमें जो विघ्न आते हैं उसको नष्ट कर देना है। सुस्ती का विघन, कमजोर संकल्पों का विघन होते हैं ना मृत्यु वेले के समय। किसी का योग नहीं लग रहा, किसी ने सोच लिया मुझे तो बीमारी बहुत है, उठ नहीं सकते, कुछ कुछ। ये सभी विघ्नों को नष्ट करना एक मास तक सभी चेक कर ले, बाबा से हमें प्राइज लेना है। प्राइज तो साथ साथ मिलता है। कई लोग सोचते हैं बाबा कई बार कह दिया प्राइज दूंगा, अब देता ही नहीं कुछ। कई लोग सोचते देता है या नहीं, साथ साथ मिल जाता है। तो बाबा से हमें अवार्ड लेना है, और सबसे बड़ा अवार्ड होता है उसका प्यार, उसकी दुआएं, साथ साथ जो मिलती हैं। तो हम संकल्प कर लें जो कुछ बाबा ने हमें कहा है वो हम करेंगे। कर लिया होगा सभी ने संकल्प, किया है या नहीं? आज जीवन निर्विघ्न बीता या विघ्न आते रहे, सोच लो सभी। आज से ही पक्का कर देना, सवेरा दिन बीत गया आज, कल से फिर से सवेरे उठने से ही व्यर्थ संकल्पों के विघ्न नहीं, व्यर्थ संकल्पों को चेक करना है सबको, क्योंकि सबकी शिकायत यही होती है योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, इसका क्या करें। मेरे पास आज ही कई माताएं आई होंगी, योग नहीं लगता, विधि बता दो ना। मैंने कहा मंत्र दे देता हूँ, विधि तो बाबा ने बता दी है। कोई ऐसा इंजेक्शन जिससे योग लग जाए? मैंने कहा मैं एक इंजेक्शन पर काम कर रहा हूँ, वो थोड़े दिन में बन जाएगा, उसको लगाते ही व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाया करेंगे। व्यर्थ संकल्पों को खत्म करना एक बहुत बड़ी साधना है ना। व्यर्थ खत्म माना संपूर्ण स्थिति, बाबा का महावाक्य है ये। बाबा ने कहा तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है ही बुद्धि को स्थिर करना। इसलिए अपने व्यर्थ को समाप्त करने के लिए मूल बात यही है। विघन ज्यादातर व्यर्थ का ही पड़ता है, कहीं बीमारियों का भी विघन पड़ जाता है, कहीं साथियों की ओर से विघन पड़ जाता है। आप कहीं सेवा कर रहे हैं, आप थोड़े लेट आए, आपके इंचार्ज ने आपको डांट डपट कर दी, बहुत क्या होगा, विघन पड़ जाएगा, योग नहीं लगेगा, खुशी नहीं होगी। या आपने कोई काम बिगाड़ दिया, ना सेवा कर रहे हैं कोई काम बिगड़ गया, उसके बाद विघन पट जाएगा। किसी को कहीं से धोखा मिल जाता है, उसमें विघन पट जाता है। आजकल बहुत चल रहा है अपने लोग अपनों को बहुत धोखा दे रहे हैं। आजकल कलयुग के अंत में अपनों से अपनों को धोखे बहुत मिल रहे हैं, ये सब विघन है। तो किस तरह के व्यर्थ संकल्प किसको उठते हैं वो जरा ध्यान दें। पास्ट की घटनाओं के, भविष्य की चिंताओं के, बच्चों के कारण, बीमारियों के कारण, असफलता के कारण, सब सोच ले किस कारण से व्यर्थ का विघ्न पड़ता है। बैठे योग करने संकल्प आने लगे, कौन से आ रहे हैं इसको चेक करें, और जिस तरह के संकल्प आ रहे हैं उनको ज्ञान बल से हटाएंगे। संकल्प बहुत आते हैं, संकल्प बहुत आते हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। मान लो बच्चों की कोई चिंता हो रही है, मान लो आप यहाँ आए हैं और अपने बच्चे को घर में बीमार छोड़कर आ गए हैं, और आपको उसकी चिंता हो रही है कि पता नहीं उसका कैसा हाल होगा, कैसे इस संकल्प को हटाएंगे? फोन कर देंगे, बात तो अच्छी है। कैसे इस संकल्प को हटाएंगे? फोन करके मान लो उत्तर मिल गया कि बच्चा बीमार है तो है? वही मैं कह रहा, मान लो फोन किया और मैसेज आ गया कि बच्चा ज्यादा ही बीमार हो गया है तो क्या करेंगे? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको मनुष्य छोड़ भी नहीं सकता, जिनका ध्यान देना ही पड़ेगा, और उनके कारण बहुत सारे संकल्प भी चलते हैं। लेकिन हमें क्या याद रखना है, जितने कम संकल्प हमारे मन में होंगे और हम दूसरों को अच्छे वाइब्रेशंस देंगे उतना ही वो चीज ठीक होगी। और हम संकल्प बहुत चलाते रहे, चिंता बहुत करते रहे, तो हमारे वाइब्रेशंस काम नहीं करेंगे, वो चीज और बिगड़ेगी, चाहे काम हो, मनुष्य हो, बीमारियां हो, किसी भी तरह का विघ्न आया हुआ हो। इसलिए हमें संकल्प कर देना है कि एक मास तो हमें अपने को निर्विघ्न बनाना ही है। ठीक है, किसी को कोई बीमारी विघ्न का रूप लेकर आ रही हो, लेकिन हमारी बीमारी पर विजय हो। बीमारी पर विजय अर्थात बीमारी का इफेक्ट हमें पुरुषार्थ करने से रोक न पाए, यह है बीमारी पर विजय। और अगर बीमारी ने हमें पुरुषार्थहीन बना दिया तो यह है बीमारी की विजय। हमें बीमारी को जीतना है। बीमारी तो है, शरीर किसी के भी संपूर्ण स्वस्थ नहीं है, कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन याद रखेंगे निर्विघ्न वो ज्यादा बनते हैं जो सरल चित्त होते हैं। सरल चित्त, इस पर सभी को बहुत काम करना है। इजी गोइंग नेचर, सहज स्वभाव, तो बाबा का ये महावाक्य इसी हॉल में चला हुआ है, तब से मुझे ये बात बहुत पक्की रही है। बाबा ने सरल चित्त पर 5 बातें कही थी। जो सरल चित्त है, माताएं आगे आ सकती हैं, खाली पड़ी, जो सरल चित्त होंगे उनकी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। नोट कर लें आप और इन पे वर्क करेंगे, इनको प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट तौर पर कितना ये भारी काम करते हैं ये अनुभव करेंगे। 5 बातें हैं, जो सरल चित्त होंगे उनकी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। दूसरी बात, जो सरल चित्त होंगे उनकी बीमारियां भी सरल हो जाएंगी। बीमारियों में जो जितना ज्यादा सोचते हैं, जो जितना ज्यादा परेशान होते हैं, बीमारी उतनी ही विकट होती जाती है। तीसरी बात, जो सरल होंगे उनके संस्कार भी सरल हो जाएंगे। बहुत ध्यान देने की बात है, जो जैसे हैं, जैसा जिनका स्वभाव है वैसे उनसे वाइब्रेशंस निकलते हैं और वैसा ही उनके शरीर पर भी इफेक्ट रहता है। पूरे मन के विचारों से वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस का इफेक्ट पूरी बॉडी पर, अंग अंग में पहुंचता है। चौथी बात थी, जो सरल होंगे उनके संबंध संपर्कों में भी सरलता रहेगी, सहज भाव रहेगा। देखो, जो सरल चित होता है उसे आप कोई भी जाके सहज मिल सकते हैं, जो सरल नहीं है उससे मिलने के लिए सोचना पड़ेगा, मिलूं ना मिलूं, डांटेंगे या क्या करेंगे, पता नहीं बात करेंगे या नहीं करेंगे, डर रहेगा ना। और 5वीं बात थी, जो सरल चित होंगे उनका योग भी सरल हो जाएगा। तो सारी बातें आ जाती हैं। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट धारणा है सरलता, सहज भाव से जीवन चलाना, अपने संकल्पों को, अपने स्वभावों को सरल करना, इजी, बहुत सरल। कोई समस्या आ गई, देखो सरल कैसा होता है, कोई बात आ गई, जो सरल चित्त व्यक्ति है वो कहेगा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, और जो सरल चित्त नहीं है, क्यों आ गई, उसने किया होगा, अनुमान चलेगा, उसने गड़बड़ की होगी इसलिए आई है, अब क्या होगा, बहुत ज्यादा विचार चलने लगेंगे। दूसरी बात, जो सरल चित्त होंगे वो आवश्यकता अनुसार मुड़ जाएंगे, मोल्डिंग पावर, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी बहुत ज्यादा। जो जितने सरल हैं आवश्यकता में मुड़ गए, और जो सरल नहीं है वो क्या करेंगे, मान लो दरवाजा 5 फुट का है और उनकी लंबाई 6 फुट है, क्या होगा, सरल चित होंगे सीधे ही चलेंगे, टकराएंगे और ये भी कहेंगे दरवाजा ऊंचा करो, और जो सरल चित हैं वो झुक के निकल जाएंगे, दरवाजा छोटा हो या बड़ा उनकी क्या, उनको क्या इससे समस्या हुई। सरल चित्तात्मा आवश्यकता अनुसार अपने को मोल्ड कर लेती है, और बाबा क्या कहते हैं, जो मोल्ड कर ले वही रियल गोल्ड बन जाते हैं। गोल्ड ही जल्दी मुड़ता भी है ना, थोड़ा सा गर्म करो आराम से मुड़ेगा। और जो अहम भाव में रहते हैं वो सरल चित्त नहीं होते हैं। सरल चित्त वाले क्या होते हैं, कहीं सेवा का कोई चांस मिल रहा है, ड्यूटी बट रही है, किसी को अच्छी ड्यूटी दे दी, जो सरल चित्त नहीं होंगे वो परेशान होंगे, देखा भेदभाव कर दिया, अपनों को अच्छी ड्यूटी दे दी, हमें पूछा नहीं गया। और जो सरल चित्त होंगे क्या होंगे, उन्हें झाड़ू लगाने की सेवा दे दी, वो आनंद मनाएंगे, वाह सबसे अच्छी सेवा, अब योग अच्छा कर सकते हैं। सरल चित्त व्यक्ति सहज भाव से सब कुछ स्वीकार करके आनंदित रहते हैं, और जो सरल चित्त नहीं है वो दूसरों को देख देख परेशान होते हैं। मैं एक बहुत अच्छी कहानी सुनाया करता हूँ, है तो कभी की सच्ची कहानी, आज फिर सुना देता हूँ, नए सब बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस चल रही है ओम शांति भवन में, दो सेवाधारी हैं, पहले दिन की एक की घटना। सेवाधारी रात को 10 बजे सेवा करके डाइनिंग हॉल में पहुंचता है, भोजन खाने वहां कोई नहीं है क्योंकि 10 बज गए, सब समेट के चले गए। उसने ढक्कन खोले, देखा नीचे थोड़ी सी दाल पड़ी है, सब्जी वाला खोला थोड़ी सी सब्जी ठंडी, रोटी देखी टूटी टूटी पड़ी है, बड़ा गुस्सा आया, क्या है सारा दिन सेवा की कोई खाने को भी नहीं पूछता, थाली पटकी चले गए सोने, अब नींद तो आएगी नहीं, संकल्प चल रहे अगली बार सेवा में नहीं आएंगे, यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं, परेशान हो रहे, रात को कभी सो रहे कभी जग रहे, कभी सो रहे कभी जग रहे। अगले दिन दूसरा सेवाधारी ऐसे ही 10 बजे आता है, देखता है कोई नहीं है, दाल थोड़ी सी पड़ी है ठंडी, दूसरे में सब्जी, तीसरे में रोटी चूर टूटी हुई, थाली में डालता है, बाबा को याद करता है, उसे धन्यवाद देता है कि वाह बाबा वाह, मैं अंत में आया तो भी मेरे लिए भोजन बचा के रखा, रोटी भी तोड़ के रख दी ताकि मेहनत न करनी पड़े, वाह बाबा वाह, और आनंद पूर्वक खाना खा के, खाना भी ठंडा और दिल भी ठंडा, खा के जाता है सोता है खुशी में, वाह बाबा तुम्हारे जैसा बाबा कोई नहीं है, बार बार आया करेंगे तुम्हारे पास। समझ गए ना इस कहानी का, ये है सरल चित्त और उनके पास है बहुत कामनाएं। सरल चित्त व्यक्ति सदा ही सुखी है। माताएं घर में सरल चित्त होती हैं या नहीं, बच्चों ने खा लिया सारा भोजन खाया थोड़ा सा बचा उसमें ही खा के खुश होती है ना, या सोचती है बच्चों ने सारा खा लिया मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, क्या माताओं का हाल है, नहीं ना, ये सरल चित्त स्थिति है। हमें सहज भाव से सब कार्य करने हैं, मान सम्मान मिल रहा है, जो सहज भाव वाले हैं वो दूसरों को मान मिलता देख के ताली बजाते हैं खुश होते हैं, और जो सहज स्वभाव वाले नहीं हैं वो सोचते देखा इसे मान मिल रहा है, काम तो कुछ नहीं किया, मान लेने के लिए स्टेज पे चले गए, माला डलने लगी तो सबसे आगे हैं, परेशान हो रहे सोच सोच के। जो सरल चित्त नहीं है वो सोच सोच कर बहुत परेशान होते हैं, जो सरल चित्त हैं वो हर सीन का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनना चाहिए, जो सरल चित्त होंगे उनके विघ्न भी सरल हो के समाप्त हो जाएंगे। इस धारणा पे सभी बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि बाबा के सामने भी बाबा जब आते हैं ना कलाए, उस सीन में भी कईयों को बहुत संकल्प चलते ही रहते हैं, स्टेज पे हमें नहीं बुलाया, बाबा इनसे ही मिलता है रोज रोज, टोली भी रोज यही खाते हैं, औरों को मौका ही नहीं मिलता, होता है ना संकल्प, रोज उन्हीं के मुंह में टोली जाती है, लेकिन बाबा सबको खिला देता है ना ऐसे करके, जो इसको स्वीकार करे उसके अंदर वो टोली का रस चला जाएगा, और जो संकल्पों में रह जाएंगे उन्हें उसका सुख नहीं मिलेगा। कोई आत्माएं बैठी रहती हैं हॉल में, ऐसी बहुत बैठे रहते हैं जो हर सीन को देख के एंजॉय करते हैं, भगवान को देख रहे हैं, कैसे वो खड़ा हुआ झंडा लहराया, कैसे देखा कैसे दृष्टि दी। मुझे याद है जब पहली बार बाबा ने झंडा लहराया था, पहले से नहीं लहराते थे बाबा झंडा, पहली बार ओम शांति भवन बनने पर बाबा ने झंडा लहराया। हमने पहली बार देखा कि बाबा इस तरह उठकर झंडा लहराया, और कई दिन तक रात को वही टाइम वही सीन सामने घूमता था, वाह भगवान को ऐसे झंडा लहराते हुए देखा है। फिर तो वो हर साल होने लगा, तो हर सीन को देखकर आनंद लेना ऐसी सरल चित्त आत्माओं की निशानी है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हर चीज को पॉजिटिवली लेंगे। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है, हर बात में कल्याण है। कहा है ना, चाहे बात है कल्याण की हो, बोलो क्या बोला आगे, पर्दे के पीछे क्या छुपा हुआ है, कल्याण छुपा रहता है, उसे देखो। भगवान उवाच संपूर्ण सत्य है ना, वही बात पहले वाली। तो जब बाबा कह रहा है हर सीन कल्याणकारी है, तो हम क्यों परेशान हो कि कल्याणकारी नहीं है। जब वो कह रहा है संगम युग श्रेष्ठ समय है, कल्याणकारी बाप तुम भी कल्याणकारी, समय भी संगम कल्याणकारी, हर जगह कल्याण होगा, तो हम क्यों सोचते हैं कल्याण नहीं है। हमारे संकल्प अकल्याण कराते हैं। चेंज करें सभी अपने को यहाँ, मेरे लिए सब कुछ कल्याणकारी है होगा, मेरे लिए गुड टाइम चल रहा है, गुड टाइम चलेगा, सब कुछ सुंदर है। ऐसी भावनाएं बना दो तो सब कुछ सुंदर दिखाई देगा, क्योंकि हम सभी के पास क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण शक्ति क्रिएटिव पावर है। समझ रही ना माताएं, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। ध्यान से सुन लो सभी, जो संकल्प फीलिंग्स भावनाएं हम बार बार करते हैं उनका हम निर्माण करते हैं। अपने को सुखी बनाना अपने हाथ में, अपने को सदा खुश रखना अपने हाथ में, ऐसे ही अपने को निर्विघ्न बनाना अपने हाथ में। हर चीज पे रिएक्ट करेंगे, हर चीज के बारे में बहुत सोचेंगे, तो हर बात विघ्न प्रतीत होगी। एक व्यक्ति बाबा से मिलने आ रहा है, ट्रेन में बहुत भीड़ है, उसको रिजर्वेशन भी नहीं मिली। वो ट्रेन में चढ़ जाता है और अहमदाबाद से यहाँ तक 3.5-4 घंटे खड़ा खड़ा आता है, लेकिन उसे बहुत खुशी है बाबा मिलेगा। उसको भीड़ भाड़ और खड़ा होना कुछ नहीं लगता, और जब वो बाबा को मिलता है उसका आनंद उसे मिलता है, तो रही सही थकान भी समाप्त हो जाती है। ये विचार है ना। दूसरा सोचेगा सीटी नहीं है, कौन खड़े खड़े जाएगा, बाबा तो इधर भी मिलता है, बाबा तो हमारे साथ है ही, क्यों परेशान होना, वो अपने घर रहता है। विचार है ना। ये शक्ति किस में आती है, घर रहने वालों में या समस्याओं को फेस करने वालों में, ये हमेशा याद रखना है। समस्याएं हमें शक्ति देने आती है। समस्याओं को ऐसे ही ना समझ ले कि बिना मतलब बाबा के बन गए क्यों समस्याएं आ रही हैं, बाबा इन समस्याओं को रोकता क्यों नहीं, बाबा समस्याएं रोकेगा नहीं और ज्यादा भेजेगा, क्यों। जिनको बड़ा स्टेटस पाना है उन्हें बड़ा एग्जाम भी देना पड़ेगा या नहीं, या स्टेटस तो बड़ा चाहिए लेकिन परीक्षा ना हो न। बच्चों को आप कहेंगे नंबर तो 100 में 95 आ जाएं, लेकिन परीक्षा न देनी पड़े, तो नंबर कहां से आएंगे। सभी तैयार करें अपने को। अगर हमें ऊंची चढ़ाई चढ़नी है तो तूफानों का सामना तो करना पड़ेगा ही, पड़ेगा या नहीं, यदि महान बनना है तो बहुत सारी बातों को पार करना ही पड़ेगा। यदि शक्तिशाली बनना है तो समस्याओं को फेस करते, उन पर विजयी होते पार करना ही पड़ेगा। मन को तैयार करो, अपने संकल्प कर लो पावरफुल, हमें श्रेष्ठ बनना है, हमें वो करना है जो बाबा ने हमें कहा है, हमें निर्विघ्न बनना है। विघ्न आएंगे, हम बिना परेशान हुए उन्हें पार करेंगे, यह है निर्विघ्न स्थिति। निर्विघ्न का यह अर्थ नहीं कि विघ्न आएंगे नहीं। कोई सोच ले कि बाबा ने अभी तो कहा निर्विघ्न बनो, हमारे पास तो अभी विघ्न आ गए। विघ्न तो आएंगे लेकिन हमें परेशान नहीं होना है, उन्हें पार करना, ये है निर्विघ्न बनना। विघ्न कोई भी आ जाए वो हमारी स्थिति को बिगाड़े नहीं, ये है निर्विघ्न जीवन। ये हम नहीं सोचेंगे कि विघ्न हमारे पास आए क्यों, आए हैं नष्ट होने के लिए। कल भी मैंने एक बात कही, आग जला दी हो, मच्छर आ रहे हो, किस लिए आएंगे? मरने के लिए आएंगे या जीने के लिए या आग को बुझाने के लिए? मच्छर आग के पास आ जाए, पतंगे आ जाए तो उन्हें जलकर नष्ट होना पड़ेगा ना। हम बहुत शक्तिशाली हैं, विघ्न अगर हमारे पास आएंगे हम उन पर विजयी बनेंगे, विघ्न नष्ट होंगे, हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, नई नई बातें हमारे अनुभव में आएंगी, इसलिए हमें विजयी बनना है। तो इन स्वमानों का भी बहुत अच्छा सब अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। रोज सवेरे बाबा से निर्विघ्न होने का वरदान और तिलक लेंगे सभी। ये बात एक मास तक सभी ध्यान पूर्वक कर लेंगे। सवेरे जब हम योग करें तो बाबा के पास पहुंचें या बाबा को अपने पास बुलाएं, बाबा का हाथ सिर पर रखाएं, बाबा तिलक देता है और वरदान लेंगे बच्चे, निर्विघ्न भव, विजयी भव, श्रेष्ठ योगी भव, इस वरदान लेंगे रोज। तो बाबा से बहुत सुंदर मुलाकात होगी और उसके वरदानों की और वरदानों के साथ शक्तियों की बहुत सुंदर अनुभूति होती रहेगी। तो सभी संकल्प कर लें, संकल्पों में भी विघ्न न हो। समझते हैं ना इस बात को सभी? संकल्पों में उलझन, संकल्प अशांत कर रहे हो, संकल्प हमारी खुशी को छीन रहे हो, ये है संकल्पों के विघ्न। और हमारा चित्त शांत हो, हमारा मन प्रसन्न हो, हमारे मन में सुंदर विचार उठ रहे हो, ये है मन का निर्विघ्न होना। तो बहुत अच्छी बात बाबा की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप सबको याद दिला देता हूँ। बात बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहराई से रियलाइज करके स्वीकार करने की है। मन तुम्हारा मालिक नहीं, मन के मालिक तुम हो। बाबा ने ये बात कही बहुत बार। तुम मन के मालिक हो और मन बाध्य है, मन बंधा हुआ है तुम्हारी हर बात मानने के लिए। स्वीकार करे इसको सब। मन हमारा मालिक नहीं कि हमें नचाता रहे, कि जो संकल्प चाहे मन में चलते रहें, अपने को ये पावरफुल फीलिंग देंगे, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मन की मालिक हूँ। मन से बातें करेंगे, हे मेरे मन तुम बाध्य हो, तुम बंधे हुए हो मेरे हर आदेश का पालन करने के लिए, इसलिए आज मन में अपने में खुश रहने वाले संकल्प क्रिएट करो। आदेश दे जरा मन को, आज मुझे सारा दिन खुशी में झूमना है। तुम खुशी में खुशी पैदा करने वाले संकल्प रचो। आपको अनुभव होगा मन आपका गुड फ्रेंड बन गया है। मन सुंदर संकल्प करने लगा है जो हमें खुश रखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट सबको करना है। आज मुझे माया पर विजयी बनना है, आज मुझे क्रोध पर विजयी बनना है, आज मुझे एक रस रहना है, हे मेरे मन, तो इस तरह के शक्तिशाली संकल्प क्रिएट कर सारे दिन के लिए हम मन को आदेश दे दें। अनुभव होगा मन हमारा गुड फ्रेंड है, हमारे आदेश का पालन कर रहा है और वही कर रहा है जो हमने उसे कहा है। ये बड़ी सूक्ष्म प्रैक्टिस है, इसलिए मन को इतना फ्री न छोड़ दिया जाए कि मन कुछ भी सोचता रहे। हम मालिक पावरफुल होने ही चाहिए, बन गया है मन पावरफुल, होना चाहिए हमें पावरफुल। इस तरह अपने मन को भी अपना गुड फ्रेंड बनाएंगे और मन में विघ्न डालने वाले संकल्प न हो। देखो, एक बात के लिए मैं सबको सावधान करता आ रहा हूं कुछ दिनों से कि बाबा का ये कार्य वहां पहुंच चुका है। ध्यान से सुन लेंगे सभी। जब इस पूरे यज्ञ को, पूरे यज्ञ माना संपूर्ण ब्राह्मण परिवार, संपूर्ण यज्ञ को अब अच्छी परीक्षाएं भी देनी होंगी। बीच बीच में यज्ञ में परीक्षाएं हुई है ना, सबसे बड़ी परीक्षा हुई थी बेगरी पार्ट, फिर बाबा ने शरीर छोड़ा तब परीक्षा हुई। तो परीक्षा देने के लिए अपने को तैयार करें, मन को निर्विघ्न बनाएंगे। टाइम हो गया, ओम शांति। एक मास का होमवर्क सब याद रखेंगे और अब योग में उसको पक्का कर देंगे।
प्रभु का ध्यान।